मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 6 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज भी मैं पिछले दो दिनों से चले आ रहे विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा और इसका श्रेय इनफैक्ट मैं सीधे सीधे आपको देता हूं, क्योंकि आप लोग इस विषय पर अपनी रुचि दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। मेरे पास जो मेल आए हैं, इनफैक्ट उसमें से बहुत से मेल ऐसे हैं जो अपने स्वाभिमान को डिफेंड करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि तरह तरह से वो इस बात को जांचने परखने की कोशिश में लगे हुए हैं कि यह हमारा स्वाभिमान है, स्वाभिमान और अभिमान में यह फर्क होता है। जो स्वाभिमान है वो आत्मा का एक अच्छा गुण है, जबकि जो अभिमान है वो दुर्गुण है। इस तरीके से आप सब अपनी अपनी बातों से मुझे अवगत करा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कम से कम आप लोगों ने एक ऐसे विषय पर सोचना तो शुरू किया जिसे आप अपने आप में पूरी तरह से सत्य ही मानकर बैठे हुए थे। भले ही सोचने के बाद निष्कर्ष यही क्यों न निकले कि नहीं, जो हम समझ रहे थे वो सच था, लेकिन एटलीस्ट यह निष्कर्ष जो हम अंतिम में निकाल पा रहे हैं, अंत में सोचने समझने के बाद निकाल पा रहे हैं, और जब हम किसी भी चीज को सोच समझ कर अख्तियार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब वो हमारे अंदर बहुत गहरे उतरता भी चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी कोशिश मित्रों आप सब कर रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस कोशिश को जारी रखें। यहां मैं एक बात थोड़ी सी और बता दूं मित्रों, एक शब्द होता है गर्व, है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइड। प्राइड एक अच्छी बात है, प्राइड एक अच्छा गुण है, प्राइड एक उदार भाव है। उदार भाव मैं क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, ये अनुदार भाव तब हो जाएगा जब हम दूसरों को हीन मानने लगे। मुझे अपने देश पर गर्व है, मुझे अपने गांव पर गर्व है, मुझे अपने माता पिता पर गर्व है, अपनी संस्कृति पर गर्व है, अपनी भाषा पर गर्व है, अपने लोगों पर गर्व है, अपने धर्म पर गर्व है। ठीक है, जिन पर भी आप गर्व महसूस करते हैं उन पर आपको गर्व है, यानी कि प्राइड है, और यह होना चाहिए। याद रखिए कि गर्व का मतलब घमंड नहीं होता है, गर्व का मतलब अभिमान नहीं होता है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि ठीक है, जिसमें मैं पला बढ़ा हूं, अपने लोगों के साथ, अपनी संस्कृति में, अपने धर्म में, अपने परिवेश में, तो मैं वही हूं जहां मैं पला बढ़ा हूं। लेकिन यह अनुदार भाव कब बन जाता है, यह निगेटिव कब हो जाता है, जब मैं अपनी चीजों पर इतना अधिक गर्व करने लगूं कि दूसरों की चीजों की अवहेलना का भाव मेरे अंदर पैदा हो जाए। नहीं, मेरा ही श्रेष्ठ है, दूसरों का श्रेष्ठ नहीं है, दूसरों का तो बेकार है, जो कुछ भी है वह मेरा है। ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं हमारे अपने ही अंदर की हीन भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाता है। अब ये बताइए कि मैं हिंदू हूं, ईसाई हूं, मुस्लिम हूं, कुछ भी हूं, सिख हूं, कुछ भी हूं, उसमें क्या मेरा कोई योगदान है? मैंने उसके लिए कुछ किया है? कुछ भी तो नहीं किया है। मैं अगर अमेरिका में पैदा होता तो आज ट्रंप की भाषा में मैं कहता अमेरिका अमेरिकियों के लिए। मैं अगर अरब देश में पैदा होता तो हो सकता है कि इस्लाम मेरे लिए सब कुछ होता। जहां मैं पैदा होता वही उसी पर मैं गर्व करता। तो जिसके लिए मेरा कुछ योगदान है ही नहीं, उसमें मैं अपने आप पर तो गर्व कर रहा हूं, अपनी चीजों पर गर्व कर रहा हूं, लेकिन दूसरों को हीनता की दृष्टि से देखने का जो भाव है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने पर गर्व करने के भाव को ही दूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है, कमजोर कर देता है। तो दोस्तों, गर्व को मैंने यहां थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। गर्व अच्छा है, तो अब आप थोड़ा गर्व और स्वाभिमान में भी अंतर करने की कोशिश कीजिएगा कि कहां हम गर्व करते हैं और कहां स्वाभिमान की सीमा में एंटर कर जाते हैं, और कहां फिर जब और आगे बढ़ते हैं तो अभिमान की सीमा में हमारा प्रवेश हो जाता है। इन पर थोड़े सा आप विचार कीजिएगा। मित्रों, मैं इस बारे में बहुत खुशकिस्मती रहा हूं कि 1988 से लेकर के 1997 तक मेरे सर्विस का जो ये पीरियड रहा है, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उनके साथ काम करने का अवसर रहा है। मेरे जीवन का मैं इसे सर्वोत्तम काल मानता हूं, और इस मायने में भी कि उस समय मुझे दुनिया के बहुत महान महान लोगों से मिलने का अवसर मिला। इनफैक्ट अगर मैं उनके नाम आप लोगों को बताऊं कि मैं इन सब के दर्शन किए हैं, इन लोगों से बात की है, इन लोगों को देखा है, तब शायद आप यकीन न करें कि अरे अरे ऐसे गप मार रहे होंगे। तो खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं नाम बताऊं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य रहा। इनफैक्ट जब मैं उनसे मिला, उनको समझने की कोशिश की और सच पूछिए तो उन्हें जब महसूस किया तो मैंने पाया, जो एक बहुत बड़ा गुण मैंने उनके अंदर देखा, वो ये कि इनमें क्या अभिमान नाम की चीज नहीं है, ये बिल्कुल घमंड नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, ये क्यों इतने सहज हैं, ये कैसे इतने सरल हैं। मैं कहता क्यों इतने सहज हैं भाई, आप इतने बड़े पद पर हैं, आप कुछ भी कह देते हैं तो दुनिया की मीडिया उसे हाथों हाथ लेती है, लोग आपसे मिलने के लिए तरसते रहते हैं, देखने के लिए आपको हुजूम उमड़ पड़ता है, और आप इतने सहज हैं जैसे कि आपको इस बात का भान ही नहीं है कि आप क्या हैं। ऐसा कैसे संभव है, ऐसा ये लोग कैसे रह लेते हैं। इस पर मैं बहुत सोचता था, बहुत सोचता रहा। इनफैक्ट सच पूछिए तो हाथ तो आज भी कुछ नहीं लगा है, लेकिन मैंने एक बात बहुत गंभीरता के साथ महसूस कर ली है कि शायद ये लोग इतने सहज थे इसीलिए इतने असाधारण बन पाए, और अगर असहज रहे होते, अपने अभिमान में चूर होते, तो वो नहीं बन पाते जो वे आज हैं, और उनकी जो सहजता है आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, पद उसे प्रदूषित नहीं कर पाती। तो दोस्तों फिर डेफिनेटली मैंने इस विषय पर बहुत सोचना शुरू किया, बहुत सोचना शुरू किया, और उस सोचने के दौर में ही जो कुछ बातें मेरी समझ में आई हैं उन्हें ही मैं आप सबके साथ शेयर इस फोरम के माध्यम से करने की कोशिश करता हूं। मित्रों अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, ये जीवंत तो उदाहरण है क्योंकि ये मुझसे ही संबंधित है। मुझे आप इजाजत दें कि मैं आपको आपके साथ अपनी एक घटना शेयर करूं। इसमें आप अभिमान स्वाभिमान गर्व घमंड जो भी आप कहना चाहें जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं घटना को थोड़े विस्तार के साथ बताऊंगा ताकि दृश्य भी आपके दिमाग में उभरें, तभी आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में इसका इस विश्लेषण कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। टुकड़े टुकड़े में या मैं जल्दी से बता करके खत्म कर दूंगा तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा, राइट। तो मैं इस बात की भी आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि मैं थोड़े से विस्तार से इसे बताऊं। फ्रेंड्स ये बात है 1992 की। मैं 1998 में शंकर दयाल शर्मा जी के पास पहुंच गया था। 1992 में शंकर दयाल शर्मा जी जुलाई के महीने में हमारे देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए थे, और उस समय हम सब उपराष्ट्रपति भवन में रह रहे थे, उपराष्ट्रपति ऑफिस में रह रहे थे, भवन नहीं था, उपराष्ट्रपति भवन में, उपराष्ट्रपति जी के ऑफिस में 6 मौलाना आजाद में हम लोग काम कर रहे थे, राइट। तो जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं उपराष्ट्रपति भवन के, उपराष्ट्रपति कार्यालय के कह लीजिए, उपराष्ट्रपति भवन भी आप कह सकते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति जी का निवास वही है और वही उनका ऑफिस भी उसी कैंपस में एक साइड में ऑफिस लगता है। तो फ्रेंड्स ऑफिसर्स जाने शुरू कर देते हैं राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति जी कहाँ रहना पसंद करेंगे, कौन सा कमरा लेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं चाहिए, फैमिली के लिए कैसा, ऑफिस के लिए कैसा, वो सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो वहीं रहना शुरू कर देते हैं, ये लगभग चला आ रहा है। तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया, नो डाउट कि उपराष्ट्रपति के ऑफिस में एक नया उत्साह था कि भाई हमारे उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति चुने गए हैं, इस बात की बेहद खुशी भी थी, राइट। अब आप देखिए कि हो क्या रहा था कि अब इस बात के प्रति बड़ी शंका बनी हुई थी कि उपराष्ट्रपति कार्यालय में जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनमें से किन किन को उपराष्ट्रपति जी अपने साथ राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे। उनकी चॉइस पर होता है, वो जिसको भी चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं, बाहर से भी लेकर आ सकते हैं, राइट। उसमें आप ये मान करके चले कि 3 लोगों का बिल्कुल निश्चित था कि ये राष्ट्रपति भवन जाएंगे ही, उसमें जो 2 ऑफिसर्स थे वो महाराष्ट्र से, जब उससे पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले शंकर दयाल शर्मा जी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, तो जब वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे तब भी ये दो तीन ऑफिसर्स उनके साथ महाराष्ट्र में भी काम करते थे, तो उन तीनों को वो उपराष्ट्रपति बनने के बाद अपने साथ लेकर के आ गए थे। और उसमें से एक जो थे वो तो बहुत लंबे समय से उपराष्ट्रपति जी के साथ रह रहे थे, मतलब उनके निजी एक तरह से पारिवारिक सदस्य की तरह ही थे। तो इन तीन का तो निश्चित था, लेकिन अभी डिक्लेयर कुछ नहीं किया गया था, लेकिन सब ये मान करके चल रहे थे कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे, इन्हें तो कौन रोक सकता है। लेकिन बाकी जो स्टाफ था उनके बारे में निश्चित नहीं था कि इनका क्या होगा, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। दोस्तों 25 जुलाई को उनको शपथ लेनी थी और 23 जुलाई हो चुकी थी और अभी भी मालूम नहीं था कि क्या होगा। उसी समय में मेरे ससुर साहब दिल्ली आए हुए थे, हम लोगों के पास रुके हुए थे। वो बार बार मुझे इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें उपराष्ट्रपति जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि सर मैं आपके साथ जाना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, या जो भी कह लीजिए, उनकी अपनी भाषा थी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं जाकर के उनसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, उनके साथ मैंने इतने साल काम किया है, अगर वो समझते हैं कि मैं उनके लिए उपयोगी हूं तो फिर वो मुझे ले जाएं, और अगर वो समझते हैं कि मैं उनके लिए उपयोगी नहीं हूं तो मैं क्यों अनावश्यक रूप से उन पर बोझ बनूं, मैं जाना नहीं चाहूंगा। मैं ये कहकर के टालता रहा, राइट फ्रेंड्स। 24 तारीख को उपराष्ट्रपति जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें मेरे साथ राष्ट्रपति भवन चलना है। ठीक है, नाम फाइनल हो गया और बात खत्म हो गई। मुझे उस समय ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी जीत हो गई, जैसे मैं जीत गया। देखो, मैंने बहुत अच्छा हुआ कि मैंने उपराष्ट्रपति जी से रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं उस पर सोचता हूं, या इससे पहले जब मैं इस विषय पर सोचना मैंने शुरुआत की, तो मुझे उस समय जो अपनी जीत लग रही थी, आज वह मुझे अपनी बहुत भयानक हार मालूम पड़ती है, बहुत भयानक हार मालूम पड़ती है। नहीं, वो मेरी जीत नहीं थी, वो मेरा झूठा अभिमान था, थोथा अभिमान था, खोखला अभिमान था। मुझे उनके सामने अपनी बात रखकर और उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए थी। आज मुझे सोच सोच करके इस बात की बेहद तकलीफ होती है कि मैंने कितना बेवकूफी भरा कदम उठाया था। नो डाउट उस समय मेरी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी फ्रेंड, 32-33 साल की उम्र थी, समझ नहीं आती है। उस नासमझी के कारण मैंने अपने स्वाभिमान को जस्टिफाई करने की उस समय कोशिश की, जिसको लेकर के आज मुझे बेहद अफसोस होता है कि वो मेरा झूठा घमंड था, भयानक किस्म का थोथा और घृणित घमंड। उस समय जो सही लगता था आज वह मुझे गलत मालूम पड़ रहा है। मित्रों, एक घटना की मैंने चर्चा की है, आप सब भी इस पर थोड़ा सा विचार करें और विचार करने के बाद आपको इस घटना में क्या दिखाई पड़ता है मुझे बताएं, तो शायद मुझे सोचने के लिए कुछ और कोण मिल सके। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।